परिशिष्ट एक कामायनी का आमुख और रचना विधान का संदर्भ। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मन श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए संकेतित अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मन अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। श्रद्धा हृदय याकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु, ऋग्वेद 10:151 चौथा श्लोक। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की कथा सृष्टि हुई है। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना को भी काम में ले आने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सका हूँ। जयशंकर प्रसाद, कामायनी आमुख। प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मन द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनर्विधान का आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है। काव्य का आधार है मन का पहले श्रद्धा को, फिर ईड़ा को पत्नी रूप में ग्रहण करना तथा ईड़ा को वंदिनी या सर्वथा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर कोप करना, रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है और ईड़ा व्यवसायत्मिका बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। ईड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 597। तीसरी पद्धति प्रकृत काव्य पद्धति है, जिसमें समस्त वस्तु निरूपण और भाव वर्णन स्वाभाविक रूप में रहा करता है और अपना साध्य आप ही होता है। प्रसाद जी के कामायनी काव्य की रचना प्राकृतिक भाव भूमि पर की गई है, यद्यप उसमें एक दार्शनिक तथ्य निर्देश भी हुआ है। प्रसाद ने मानव वृत्तियों का निरूपण करने वाले अपने काव्य में एक दार्शनिकता का आभास अवश्य दिया है, पर वह दार्शनिकता काव्य का अंग बनकर आई है और उसकी प्रकृत भावना भूमि पर ही अधिक अधिष्ठित है। वह काव्य के वस्तु और वर्णन उसके भावात्मक स्वरूप को किसी प्रकार ठेस नहीं पहुंचाती। इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी अन्योक्ति तो है ही नहीं, उसे समासोक्ति भी नहीं कहा जा सकता। उसमें एक दार्शनिक अंतरधारा मिलती है, परंतु वह काव्य की स्वाभाविक भाव व्यंजना से अभिन्न और तद्रूप होकर आई है। नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पृष्ठ 105। इस प्रकार कामायनी निस्संदेह ही रूपक है। प्रसाद जी ने कथा के मूल तत्वों को ऐतिहासिक मानते हुए उनके आधार पर ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना का उपक्रम किया था, किंतु कथा का सांकेतिक रूप उनके मन में आरंभ से अंत तक वर्तमान था और मन के विकास का प्राचीन वैदिक रूपक उनको वैसे भी अत्यंत प्रिय था। नरेंद्र, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, पृष्ठ 50। कामायनी के रचना विधान को समझने में उसके आमुख ने कभी कभी बाधा उपस्थित की है। यों भी किसी कवि का केंद्रीय कृतित्व तो उसका काव्य है, उसके बारे में उसका वक्तव्य नहीं। अपने आमुख में प्रसाद कामायनी की रचना प्रक्रिया के संबंध में अंतिम अंश में ही कुछ उल्लेख करते हैं। आरंभ में लंबा विवेचन तो मनु श्रद्धा ईड़ा के प्राचीन आख्यान से संबद्ध है। प्रसाद ने स्वयं उसका किस रूप में रचनात्मक उपयोग किया है, इस संबंध में उन्होंने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी अंतिम कुछ पंक्तियों में दी है और इन पंक्तियों ने जब तब कामायनी के पाठकों को भरमाया है। उसके इतिहास और रूपक पक्ष को लेकर, उसकी समूची परिकल्पना को भी लेकर, यहाँ वसुतः प्रसाद ने अपने शालीन व्यक्तित्व के अनुरूप और सांकेतिक तथा मित कथन की शैली में अपनी रचना प्रक्रिया पर टिप्पणी की है, जिसे कई बार सीधे अभिधात्मक रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। विवेचित पंक्तियों की व्यंजना मुझे तो यह लगती है कि कवि अपने सूक्ष्म रचना प्रक्रिया में मनुश्रद्धा ईड़ा के ऐतिहासिक अस्तित्व की अपेक्षा सांकेतिक अर्थ को कुछ अधिक महत्व दे रहा है और कथा श्रृंखला की अपेक्षा अपनी थोड़ी बहुत कल्पना के सृजनात्मक योगदान को रेखांकित कर रहा है। इतिहास और कथा की लंबी परंपरा के समक्ष कवि अपनी विशिष्ट रचनात्मक शक्ति को इससे भिन्न किसी ढंग से बताता तो प्रगल्भता होती, जो प्रसाद जैसे सहृदय और सुसंस्कृत कवि व्यक्तित्व के अनुरूप न थी। कामायनी के विधान की यह मौलिक विशेषता फिर स्मरण दिलानी होगी कि यहाँ पूरी रचना का अर्थ एक नहीं है, पर रीतिकालीन श्रेष्ठ काव्य की तरह दो अलग अलग अर्थ भी नहीं है, वरन एक ही अर्थ के दो स्तर अपने तनाव और संश्लेष से एक बृहत्तर अर्थ की सृष्टि करते हैं। रचना के क्षेत्र में यह अर्थ का अद्वैत है, जो छायावादी काव्य विशेष रूप से नटराज की व्यापक सूक्ष्म और प्रतीकात्मक परिकल्पना में पर्यवसित होने वाली कृति कामायनी की विशिष्ट रचना प्रक्रिया और उपलब्धि है। रचना में दो अर्थ स्तरों का यह तनाव और फिर क्रमशः अद्वैत भाव संभोग और अध्यात्म जैसी सृजन प्रक्रियाओं के समानांतर देखा जा सकता है।